लेकिन ये लेटर जब आया तो मैंने सेक्रेटरी से बात की कि आई एम नॉट इन कैपेसिटी टू सेलेक्ट लॉयर, ये मेरा काम नहीं है, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर लेवल का आदमी है, मैं 21-22 ग्रेड का आदमी के साथ जाकर क्या करूंगा, आप फेडरल सेक्रेटरी के साथ जाए या लॉर्ड जस्टिस डिवीजन जो है वो वकील सिलेक्ट करे। लेकिन ये है कि वो सेक्रेटरी अपनी जान छुड़ा लेते हैं, कहते हैं लेटर आपको लिखा है तो आप जाएं। मैं उधर कमाल मजीदुल्लाह के साथ उधर गया, मेरे साथ जॉइंट कमिश्नर थे, वहां उन्होंने मुझे एक वकील से मिलाया, उन्होंने कहा जी ये ब्रूनर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। उन्होंने बताया कि मेरा नाम कयान कैकोबाद है, वो उर्दू बोलते थे। उनके साथ दो दिन मैंने मीटिंग की, उनको प्रेजेंटेशन मैंने दी, उनको कुछ डॉक्यूमेंट जो कमाल मजीदुल्लाह ने मुझे कहा है मैं उनको देकर वापस आ गया, और महीने बाद मुझे एक लेटर आ गया मिनिस्ट्री वाया मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से कि आप कमाल मजीदुल्लाह के साथ गए थे तो आपने ये लायर सेलेक्ट किया है, इसकी ये फीस है, इसका फला है, इसको कागज दे दे, इसको पैसे दे दे। मैंने कहा आई नेवर सेलेक्टेड दैट पर्सन, मैं तो उनके साथ गया था, मैंने प्रेजेंटेशन दी है, डॉक्यूमेंटेशन को दी है। मैंने जब ये सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है जी, वो मैंने कहा ये मैंने एक ड्राफ्ट बनाकर उनको दिया था कि मैंने ये काम किए, आगे मैंने तीसरा कॉलम खाली छोड़ा था, ड्राफ्ट बनाकर मैंने मिनिस्ट्री को भी दिया था कि जी ये जो मीटिंग हुई थी सदर के कहने पर हम गए थे, ये वहां पर हमने किया था। तो ये मिनिस्ट्री ने वो सारा लेटर उठाकर ना जो उनके खिलाफ जाता था वो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में भेज दिया और मेरे खिलाफ हो गए। चटकावट तो जमात लिशा है, मिनिस्ट्री तो नहीं है।
तो आपको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया गया। इस मुल्क का रवैया ये रहा कि पॉलिटिशियंस और उनके मशीरान जो हैं अपने जाती मफादात और कमीशन के हसूल के लिए, इट्स क्वाइट समझने की बात है कि जब आपने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कंपनी की सर्विसेज ले ली और आप उसको चेंज करना चाहें तो दैट इज अ काइंड ऑफ अपने आप।
इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं राजा परवेज अशरफ साहब को मैंने शिकायत ना की, लेकिन जब वो मिनिस्टर ना रहे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मैंने उनको कहा कि मैंने आपसे मिलना है, तो मैंने उनका ये राजा साहब आपने मुझे हटाया क्यों था ये बताएं मुझे। राजा साहब ने कहा जी शाह साहब कमाल मजीदुल्लाह आपकी बार बार शिकायतें करता था कि मेरी बात नहीं मानता, और ये पीपल पार्टी के सदर थे सरदारी साहब, मुल्क के भी सदर थे, तो मैं की करदा।
शाह जी क्या कमाल की बात की, मामला कितने होर लेके चल रहे सी, पर मैनू बहुत अच्छा लग गया
कि मैं की करदा।
हाँ, एक बोझ उतरिया ताड़े सिर तो।
थैंक यू वेरी मच। और इवन ये नहीं, कमाल मजीदुल्लाह ने मिनिस्ट्री में लिख कर दे दिया कि इसको पेंशन नहीं देनी। मैं 1.5 साल मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, बिकॉज आई वॉज द कमिश्नर, आई वॉज द मिनिस्ट्री, और 2005 में मिनिस्ट्री ने मेरा नाम सिविल अवार्ड के लिए भेजा था, मुझे इस पर फख्र है, ठीक है जी। लेकिन मैंने 1.5 साल इंतजार करने के बाद, नरगिस सेठी उस वक्त सेक्रेटरी थी, लेकिन फिर मेरे पास चारा नहीं था, मैं गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद में 1.5 लाख रुपया फीस लेकर। चौथे दिन उन्होंने जो है ना, इनकी मिनिस्ट्री ने जो है ना हाथ, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, ये तो कुमार मजीदुल्लाह जो है वो सेक्शन ऑफिसर के जरिए जो है वो बंद रुकवा के बैठा था।
वेरी सैड, वेरी हम कोशिश करेंगे कि कमाल मजीदुल्लाह साहब से भी जरूर बात करें, मगर सर मेरा दिल मुतमईन है, आपने आज अपनी तफसील से अपनी बात को शेयर किया, क्योंकि जब हम मीडिया पे देखते हैं, एंड आई डेफिनेटली वांट कि इसकी स्टोरी जरूर आपको मिलना चाहिए, हमारी ई आवाज के ऊपर भी ये स्टोरी पोस्ट जरूर होगी, एंड इस वक्त मैं ऑन एयर इस बात को कहती हूँ कि आई ट्राई कि कमाल मजीदुल्लाह साहब को भी, इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो इंसान ईमानदार से काम करे और आपकी फाइल को साइन ना करे, आप उसको ओएसटी लगा के दूर परे फेंक देते हैं।
तो ये कमाल मजीदुल्लाह जब ये लगे, और मेरी पहली मीटिंग हुई जरदारी साहब से, उन्होंने मुझे कहा कि ये हमने एडवाइजर रखे हैं वाटर सोर्स पे, आप इससे कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है जी। और जरदारी साहब ने जब पूछा कि आप करते क्या है, किस तरह आपको पता चलता है इंडिया में क्या हो रहा है, तो मैंने एंडेवर बताया कि हम क्या कोशिश करते हैं, उसमें कोशिश ये थी कि हम सैटेलाइट इमेजरीज लेते हैं। वो कहते हैं किससे लेते हैं, मैंने कहा आईएसआई के साथ मिलकर लेते हैं। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया है, लेकिन मेरा इसके अलावा चारा नहीं आता, ठीक है जी। तो वो मुझे क्या कहते हैं कि इसी न्यूट्रल इदारे से लें। सदर साहब कह रहे हैं मुझे आईएसआई नहीं, किसी न्यूट्रल इदारे से लें। मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ और मैंने अगले दिन फिर उन इदारों को कहा कि ये हमारे सदर साहब हैं, ये हमारे सदर साहब हैं।
इदारों का क्या कहूँ, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूँ सर, हम अगर आपकी इजाजत हो।
मैं आपका प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं बंद करवाना चाहता, लेकिन ये फैक्ट्स बड़े हार्ड हैं।
नहीं सर, हम अगले हफ्ते फिर वेनसडे को आपसे बात करेंगे, अगर आपको गिरा ना गुजरे तो।
शुक्रिया जी आपका,
और यहीं से हम बातचीत को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि एस्केलेशन खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान को। और आज आपकी मौजूदगी में नहीं, मैंने इससे पहले भी बहुत बार कहा कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने किसी केस को भी प्रूव ना कर सके, इंटरनेशनली हम कहीं भी रियासत के लिए लॉबिंग ना कर सके। आज अगर लॉबिंग हो रही है माजरत के साथ, बहुत से लोगों को
ये जो ब्रूनर जोशी में प्रोफेसर साहब थे, मैंने जो भंडारी एंड भंडारी जो हैं, जो हमारे वकील थे, यानी कि जो पाकिस्तान में फैसल सैयद फैसल वकील थे, मैंने उनको कहा कि ये कैन कैको बाद जो प्रोफेसर हैं, इनको सीवी तो निकालें। उन्होंने कहा जी इसने जिंदगी में इंटरनेशनल वाटर लॉ पे काम नहीं किया, ना को केस किया, सिर्फ इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल वाटर लॉ नहीं इन्होंने किया हुआ।
एंड दिस वॉज द मैन जिसको जनाब
ये ला रहे थे,
कमाल मजीद साहब लेके आ रहे थे।
ठीक है जी, आप इसमें क्या करें, जमात रिशा उसमें क्या करता, मैं तो लड़ गया हूँ, मैंने अपनी
सैलिटी। दिस प्रोग्राम इज टू बी कंटिन्यूड, प्लीज आप लिख लीजिएगा इसको, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।
बात ये मैं देख जी अपने पेट से उठाना नहीं चाहता था, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, इदारे मेरे हैं।
सर इदारों को आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने बड़ी,
मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकली, मैं पॉलिटिकल लोगों को भी कहता हूँ, कहते हैं जी नहीं हुआ, मैंने कहा जी बात यह है गवर्नमेंटें यहाँ स्टेबलाइज नहीं रही, हर तीन साल बाद गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, क्या करें,
क्योंकि दूसरी पार्टी बैकडोर से रसाई चाहती है।
मैं उसको फ्रंट डोर ही कहता हूँ, क्योंकि उसमें नायाली हमारी होती है ना, हमारे पॉलिटिशियन की नायाली होती है, इसलिए वो बैक डोर नहीं है, वो भी फ्रंट डोर है, क्योंकि वो भी जो दास्तानें हैं ना उनके पास जो पहुंचती हैं कि कर ये क्या रहे हैं और कहते क्या हैं, तो फिर वो बैक डोर ही लगता, वो भी नेशनलिस्ट लोग हैं, वो आते हैं, लेकिन लेकिन ये जो जमाना है ना वो बर्दाश्त, जमाना बर्दाश्त नहीं करता, ना लोन को देता है, ना को बात करता है, आइसोलेशन हो जाती है।
सर बहुत शुक्रिया,
हमें पता चलता है कि ये भी जो पहलू था ये ठीक नहीं।
इस प्रोग्राम को सर आपकी इजाजत के साथ हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्यूजडे को। आई हैव माई नोट्स एंड आप इस प्रोग्राम को सुनिएगा, बट बुनियादी तौर पर मसला पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी, लुब्बे लुबाब ये है कि तीन दरियाओं के ऊपर हिन्दुस्तान का पूरा हक था, तीन दरियाओं का अपर रायपेरियन एंड लोअर रायपेरियन का राइट हमको मिला था, मगर एट द 11th आवर इंडिया ने अपनी कंडीशन जो रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डैम्स भी बना सकते हैं, 30% सैराब, 13,000 एकड़ को हमने सैराब भी करना है, डोमेस्टिक यूज के लिए भी, फैक्ट्री यूज के लिए, मगर फिर वक्त के साथ साथ ये वायलेशन बढ़ती चली गई। इसी तरह से अगले प्रोग्राम को भी जरूर देखिएगा, इस प्रोग्राम को भी हम दो सेगमेंट में पेश करेंगे, तीसरा प्रोग्राम भी इसका जरूर देखिएगा, बिकॉज आई एम मोर कंसर्न कि आज अमेरिका और नासा ये कहता है कि दुनिया की जो रोटेशन है वो स्लो हो गई बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना जो डैम्स बना रहा है इतने बड़े कि इससे बड़े डैम आज तक नहीं बने, और ये पानी की शॉर्टेज हमें किस तरफ लेके जाएगी। अगर पाकिस्तान के डैम्स पे, पाकिस्तान के दरियाओं पे इंडिया डैम्स बनवा रहा है, तो वो डैम जो इंडिया में दाखिल हो रहे हैं, ब्रह्मपुत्र की अगर बात कर लेते हैं, तो उन पे बड़े बड़े डैम्स, जोश डैम्स जो हैं, वो चाइना बना रहा है। सिलसिले को यहीं से जारी करेंगे। सैयद जमाल अली शाह साहब, विल डेफिनेटली बी इन टच, स्टेट अभी आप मेरे साथ एक मिनट रहिएगा।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM, यंगस्टाउन टोरंटो। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
अपनी कम्युनिटी का सब तो बड़ा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता सोडी फर्नीचर तो। 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन। 9058747471।
शॉपर्स, खुद जाइए तैयार। लीटास कॉस्मेटिक फिर से लाए हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी सेल।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ।
80% तक की सेविंग ऑन योर फेवरेट प्रीमियम ब्रांड्स।
बस आपको आना है लीटास कॉस्मेटिक्स, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कसन, जस्ट ऑफ हाईवे 404 एंड 407 एंड क्लोज टू 401।
सेल इज फ्रॉम अप्रैल 26 टू मई 18, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। मदर्स डे गिफ्टिंग का भी एक्सीलेंट मौका।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकनिक एजेंसी के राजा बाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकनिक एजेंसी के राजा बाशा, 6472903773।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡ 1, 3, 4, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/rrl ਤੇ ਜਾਓ।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 years ऑफ अंडर राइटिंग एक्सपीरियंस एंड 2 years इन द फील्ड। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 9056075000, 905-607-5000।
जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक। 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदार स्ट्रीट, ईस्ट मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ अब तक की गर्मा गर्म ताजा तरीन पानी डाल के खबरें ले आई हैं शाजिया मलिक साहिबा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, आइए उनको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS मेरे अजीज हमवतनों, ये ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। कल तो तुमने मुझे कहा है कि मेरे उस्ताद ने कहा है कि ज्यादा बातें नहीं करनी, चुप करके बैठो। आज तुम ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो?
एयर पे तो बात करनी पड़ेगी ना, काम यही है। अच्छा मैं खामोश होकर बैठ जाऊं? नहीं भाई, लोग परेशान हो जाएंगे, आरफा पापा को कॉल आ जाएंगी 770 से आवाज नहीं आ रही, ये नहीं होना चाहिए ना।
अच्छा,
काम जारी रहना चाहिए।
अच्छा,
जब काम की बात हो तो वो करना चाहिए।
हाँ हाँ हाँ।
जैसे आज भी देखे ना, वो मक्कारनी साहब जो है वो काम की बात है वो कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब है वो हर बात करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है।
अच्छा, तुम्हें ना किसी दिन वो आएंगे काले चश्मे वाले उठा के लेके जाएंगे, बोलेंगे रोज तू हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ बात करता है।
रिस्पेक्ट,
कल तुमने
मैं पहला आदमी था, मैं और माजिद भाई और
हमने कल भी
हम थे, उस वक्त भी आप कहेंगे नहीं वो ट्रम्प नहीं जीतेगा।
नहीं, तुमने कल भी ट्रम्प साहब को छेड़ा, तुमने मुझे कहा है क्यों आजकल ट्रम्प साहब कोई टैरिफ वेरिफ की बातें नहीं कर रहे?
वो
अब कल भी तुमने
प्यार में कहा, प्यार में।
अच्छा, उनको नहीं पता ना काले चश्मे?
देखिए, जो आपका प्यारा होता है वो दो चार दिन कहीं नजर ना आ रहा होता है, उसको वो कहाँ है? उस सेंस में मैंने कहा कि
नहीं, ये इतना प्यार उनको नहीं समझ में आता है, जो काले चश्मे वाले और काले सूट वाले है ना। तुमने कल भी उनके प्रेसिडेंट को छेड़ा है, तुमने आज भी छेड़ा है, तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ, मैं बताने लगी हूँ आरफा जी को कि अगर वीकेंड के बाद ये ना नजर आया तो हमको पता होना चाहिए ये कहाँ है। इसको डाला आया था, डाल के ले गए अमरीका,
ले जाए, उन्हें भी अंदाजा हो जाएगा किसको उठाया।
तुमने जैसे ही नारा लगाया एमकेएम का, वैसे ही उन्होंने कहना है वो यार वाकई इसमें छोड़ो यार।
मैं किसी ऐसी एमकेएम को नहीं जानता भाई।
अच्छा,
ताल्लुक नहीं रहना ना है।
अच्छा अच्छा अच्छा,
शरीफ आदमी है, काम करते हैं, रेडियो पे आते हैं, अपना छोटा काम कर, आपके साथ सारा दिन तकरीबन 12 घंटे तो आपके साथ ही, 8, 9, 10, 11 घंटे गुजर जाते हैं आपके साथ ही जिंदगी के। तो
एमक्यूएम का तुम्हें आज तक मतलब ही नहीं समझ आया। एमक्यूएम का मतलब है मेरी कॉम मेरी माँ। एमक्यूएम
पता नहीं।
हाँ,
बिल्कुल, एक ही माँ है जो अल्लाह,
तो वही तो मैंने कहा, उसी का नारा लगाना था, तुमने तो कहना था।
वो कहते हैं बस एक ही माँ है,
वो कहते हैं कि यार ये तो वाकई पप्पू है बेचारा, इसको छोड़ ही दो।
थैंक यू।
हालांकि तू है नहीं,
मैं आपने किसी हाल भी इसमें सही, मतलब आपसे कहो अलिफ और आप बोलती हैं बे।
अच्छा अच्छा, आंखों के क्या मामलात हैं भाई?
अल्हम्दुलिल्लाह,
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये किसको इशारे करके आए हो तुम?
ये अच्छे वाले इशारे,
चाइना में
ये अच्छे इशारे।
नहीं नहीं, तुम आज बता ही दो तुमने चाइना में किसको इशारे किए, तुम्हारी उस दिन से आंखें खराब है।
फैमिली में है आइस का तो
ना ना ना, ये फैमिली शैमली ना कर,
वीक हो जाती है।
ये हम तेरे साथ पिछले 5 साल से हैं, तेरी बिल्कुल आंखें ठीक थी, तो जिस दिन से चाइना से होके आया ना, तेरी आंखें जो हैं आपस में भी नहीं मिल रही हैं।
आपस में नहीं मिल रही
नहीं, और भी कुछ चक्कर चल रहे हैं तेरी आंखों के,
इंशाल्लाह।
हाँ, किसको तू आंखें मारता रहा उधर, ये बता।
चाइनीज की आंखें लग गई है मुझे लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है।
लेकिन उनकी तो बेचारों की खुलती नहीं है, तो तू उनके साथ कितना
खुलती नहीं है, मेरी बंद नहीं हो रही, उन्होंने कोई नजर लगा दी मुझे लग रहा है, कुछ खिला दिया उन्होंने।
हाँ, कुछ खिलाया, कुछ जादू वादू कर दिया,
नहीं कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ जानवर तो नहीं खिला दिया ऐसा जिसकी आंखों में कोई तकलीफ होती हो,
उसको
तकलीफ मेरे अंदर आ गई हो सकता
है। हाँ, चमचुंग टाइप का कोई जानवर खिलाया तुम्हें,
ये
नहीं तो फिर बंदा हलाल चीजें जाके खाता है ना, ये इस तरह के ची चुंग चुंग किस्म के तुम अगर जानवर उधर जाके खाओगे तो फिर तुम्हारा हाल यही होगा।
गड़बड़ हो गई।
हाँ, गड़बड़ हुई है ये।
नहीं, अब अगली बार इंशाल्लाह जब भी जाऊंगा
बिल्कुल सीधे रहना,
तो मैं उनको पहले बता दूंगा, देखो जी शाजिया जी ने कहा है कि सिर्फ हलाल खाना।
हाँ बिल्कुल,
और वो भी सिर्फ हलाल, वो वाला जबी हलाल।
हाँ, जबी हलाल। सुधर गए हो तुम,
है ना?
सुधर गए।
मैं जाते ही, पहले ही जाते ही चाइनीज को ही बोल दूंगा कि भाई यार मेरे लिए जबिया हलाल होना चाहिए, इसके अलावा मैं ये कॉकरोचेस और ये मेंढक मेंढक नहीं खाऊंगा।
वैसे बड़ी अच्छी बात है तुम सुधर गए हो। तुम्हें पता है ना, एक दफा जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया में खेलने के लिए गई थी क्रिकेट, तो वहां पे वो शायद अफरीदी साहब एक दरवाजे से गुजर रहे थे तो, होटल के, तो देखा कि वो इरफान पठान वगैरह जो है और वो उनके उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो वो वैसे ही सलाम करने के लिए उनके वालिद साहब के पास आ गया शायद अफरीदी, तो उनको कहता है कि सर आप इसकी ना शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। तो वो इरफान पठान के बाप ने उसकी तरफ देखा, कहता है तेरी शादी हुई है तू सुधरे? लेकिन तेरे बारे में हम कह सकते हैं आमिर के, तू जिस दिन से तेरी शादी हुई है ना तू सुधर गया।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है, चलो ठीक है, कोई कम
आप खबरें सुना दें इससे पहले फायर हो जाए, तो गर्मा गर्म खबरें सुनाए। और आप हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। अगर आप कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां ऑडियो यानी आपको रेडियो में स्टैटिक फील आ रहा हो, तो आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 डायल कीजिए, तो आपका जो है क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com पर विजिट कर सकते हैं, यहां भी आपको रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम स्पॉन्सर्स के नंबर हमारी वेबसाइट eawaz.com पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 24/7 हमारा टीवी है eawaz टीवी, तमाम IPTV बॉक्सेस पर मौजूद है। आप इसे उर्दू या पाकिस्तानी कैटेगरीज में ढूंढ के बआसानी जो है इसको अपने फेवरेट में ऐड कर लें, बस अब आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ई आवाज टीवी एंड रेडियो हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको जो है वो ई आवाज टीवी एंड रेडियो करेंगे तो आप जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ई आवाज टीवी एंड रेडियो के नाम से उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कॉमेंट करके बताइए कि आप उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। चलिए जनाब गर्मा गर्म खबरों की तरफ चलते हैं, मलिक साहब की तरफ चलते हैं। जी शादी,
आज हम क्विकली आपको सुनाएंगे क्योंकि आपको मालूम ही है ना सुबह आज कुछ हम लोग बिजी थे, आज हम लोग यहाँ पे बिजी चल रहे थे तो हम आपको। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय टैप टैप सेंड। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऐप है, इसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें प्रोमो कोड आपको डालना है रेडियो 20, तो उसमें जब आप डालेंगे तो एडिशनल आपको $20 ऑफ मिलेंगे जब आप भेजेंगे $200 और मोर का अपने प्यारों को पैसे बैक होम, ठीक है। और जो है अगर आपको बंडल डील्स चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के तो आपको एक ही जगह पे जाना है सुल्तान भाई के पास, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस के ऊपर, तो वहां अप्लायंसेज के ऊपर, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे कलर्स के जबरदस्त किस्म के आपको मिलेंगे जो है अप्लायंसेज, वो आप ला सकते हैं। 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे हैं वो, और उनका नंबर है 9054502828। और अगर आपके दांत खराब हो गए हैं और अगर आपको दांतों का कुछ समस्या हो गया है तो आप डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जा सकते हैं। पहले वो जो थी मिसेस सागर रोड पे थी और अभी वो चली गई है रिजवे के ऊपर, तो रिजवे पे उनका नया डेंटिस्ट्री ऑफिस खुला है, तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे सर्विसेज मिलेंगे। उनका नंबर है 9058721100 और जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रक है उसका हेल्थ अच्छा रहे, वो भागता फिरे रोड्स पे और कभी रुके ना, आपको हेडेक ना दे, तो क्विक ट्रक ल्यूब के पास आप जाइए। क्यूटीएल वाले जो हैं वो ओरिजिनल अपने सारे यूज करते हैं ऑयल्स, और को कहते हैं जी कि किसी तरह का भी आपका काम है ल्यूब्रिकेशन का, ट्रांसमिशन फिलर सर्विस जो है, तो आप उनके पास जा सकते हैं नेपनी के लोकेशन पे। तो उनका नंबर है 1519622060, 1519622060। और जनाब आज वीकेंड है तो वीकेंड के ऊपर अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो फैसल चटा साहब के पास जाइए, उनके दो रेस्टोरेंट्स है विलेज टेस्ट एक तो मिसेस सागा में है और अभी उनका नया जो ब्रांच है कुछ अर्सा पहले, कुछ 6-7 महीने पहले उन्होंने खोला है वहां पे ओकविल में भी, तो आप दोनों ही जगह जा सकते हैं और ऑर्डर भी डाल सकते हैं। तो आप उनके दो नंबर से उनको कॉल कर सकते हैं, मिसेस सागा में 9052323663, और अगर आपको ओकविल जाना है तो उसका नंबर है 9052262294। और जनाब राजा थे बादशाह जी, राजा भी है और बादशाह भी है और दोस्त भी हैं आमिर के, तो अगर आपको ढेरों पैसे बचाने हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं और वो आपको बहुत सारे 1775 जो है वो बचा के देंगे। ऑल स्टेट के साथ हैं और होम और ऑटो इंश्योरेंस जो है वो करते हैं, तो आपको अगर अच्छे रेट्स चाहिए तो आप राजा बादशाह जी से बात करें। एंड जनाब राजा बादशाह जो है वो बहुत ही आपको ऐसे रेट्स देंगे जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। और जनाब आपको जाना है अगर कोई आपको गिफ्टिंग करनी है, कोई सोने का कुछ चीज लेना है जैसे अकीका है, शादी है, कुछ एंगेजमेंट है, तो आप पायल ज्वेलर्स पे जाइए हमारे असलम भाई के पास। असलम भाई आपको बहुत अच्छी वो भी जो है वो आपको डिफरेंट किस्म की इंडिया पाकिस्तान सिंगापुर से बहुत अच्छी उनके पास ज्वेलरी है, तो आप उनके पास जा सकते हैं 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन में, उनका नंबर है 9057907879। एंड जनाब इसके अलावा अगर आपको अच्छे कपड़े चाहिए तो स्पीयर एंड मके पे जाएं, उनका नया लोकेशन यहां पे आ गया है ब्रिटानिया रोड के ऊपर, और इटालियन वूल के बहुत सारे चीजें हैं, इसके अलावा और भी इटालियन फैब्रिक की उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट पे हैं वो, उनका नंबर है 9056703388, दैट इज 9056703388, ठीक है जी, उनके पास जाएं। ओके जनाब हम अब अपनी खबरें शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी आज हम करेंगे ताकि आपको खबरें सारी तो दे दें और जो है आप बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड है। प्राइम मिनिस्टर कार्नी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरी मुलाकात जो है ट्रंप साहब के साथ जो है व्हाइट हाउस में ट्यूसडे के दिन या कि नेक्स्ट वीक जो है ट्यूसडे के दिन होएगी और ये उनकी फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग रहेगी जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको बताइए ना कि ये इलेक्शन तो बाद में अभी हुए हैं, मार्च 14 को ही वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे जब ट्रूडो साहब छोड़ के गए थे, तो उसके बाद फिर इन्होंने स्वेयरिंग इन की थी, तो अब वो जो है इनको जाके मिलेंगे और दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रेड के ऊपर ज्यादा इनकी बातचीत रहेगी, इसके अलावा सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर ये सारे अपने डिटेल्स दे रहे थे और अपनी पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है ये बनाने जा रहे हैं फेडरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद। तो इनसे पूछा गया, रिपोर्टर्स ने इनसे पूछा कि भाई आपका जो है क्या अप्रोच रहेगा पार्लियामेंट के अंदर और आपका जो है ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या बातचीत रहेगा, तो उन्होंने कहा जी कि मैं और उन्होंने पूछा रिपोर्टर्स ने ये भी कि क्या आप यूएस टैरिफ्स को लिफ्ट करने की कुछ बातचीत करेंगे कि हम इन चीजों को सेटल करें, तो उन्होंने कहा कि ये मैं पब्लिक प्लेस में ये सारी नेगोशिएशन और बातें नहीं कर सकता हूं, तो ये मैं जिनके साथ मुझे करना है वैसे करेंगे। कंजर्वेटिव एमपी जो हैं जी अब एक वो अपनी सीट दे रहे हैं, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि कोई सीट जब तक छोड़ेगा नहीं तो उस वक्त तक पीए पॉली है वहां से बाय इलेक्शन नहीं होंगे, जीतेंगे नहीं तो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकेंगे, तो आज एक कंजर्वेटिव एमपी ने कहा है कि वो अपनी सीट छोड़ेंगे। ये है कंजर्वेटिव एमपी इलेक्ट डेमियन क्यूरिक, उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन करेंगे टू अलाउ पीए पॉलीएफ टू रन फ्रॉम हियर इन अपकमिंग बाय इलेक्शंस। आपको पता ही है ना कि जैसे ही कोई सीट वेकेंट होती है तो वहां पे बाय इलेक्शन होता है, तो उसकी वो बात कर रहे थे। और ये जो है क्यूरिक यहां से जीते थे सबसे पहले 2019 में, ये अल्बर्टा की राइटिंग है ऑफ बैटल रिवर क्रोफुट, और अभी जब जीते हैं तो इनको 82% वोट जो है मिला, तो उनको अब लग रहा है जाहिर है कंजर्वेटिव पार्टी को भी कि ये बहुत ही स्ट्रांग कंजर्वेटिव राइडिंग है, तो इससे पीए पॉलीएफ साहब जीत सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ओटावा एरिया की राइडिंग थी कॉर्लेटन वहां से ये हार गए थे, तो उस सिलसिले में फिर अब ये जो है पहुंचेंगे उसमें पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। कार्नी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं पार्लियामेंट को वापस बुला रहा हूं मई 26 को, और उनसे पूछा गया आज रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या आप कोई डील करेंगे एनडीपी के साथ जैसे कि ट्रूडो साहब ने किया हुआ था, उन्होंने कहा जी मैं कोई भी फॉर्मल डील नहीं करूंगा, क्योंकि आप जाहिर है कि ये स्नैप इलेक्शन बुला सकते हैं ना उनको प्रोवाइड अवॉइड करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी नहीं अभी मैं कोई उनके साथ नहीं करूंगा, ट्रूडो साहब के साथ कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई का उनका अग्रीमेंट था, उन्होंने कहा जी कि हमको इस वक्त अपने मुल्क को चलाना है और उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा और काम मैं करूंगा इन पार्टनरशिप विद प्रोविंसेस एंड इंडिजिनस पीपल। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मेरी बहुत कंस्ट्रक्टिव टॉक हुई है पीए पॉलीएफ के साथ भी और ब्लॉक की बैकवा के जो लीडर हैं फ्रैंकवा ब्लांशे के साथ, उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल इजाजत दूंगा और पीए पॉलीएफ को इजाजत दूंगा कि वो बाय इलेक्शंस में रन करें और अपनी सीट जीत के पार्लियामेंट के अंदर आए, और जो है वो इसमें कोई गेम्स नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट टॉक है, कोई यानी कि इसके अंदर ड्रामा नहीं है, जिस तरह आमिर करता है ना ड्रामे, वो कहते नहीं इसमें कोई ड्रामा नहीं है। किंग चार्ल्स जो है वो डिलीवर करेंगे जी स्पीच थ्रोन से, क्योंकि वो और क्वीन कैमिला जो है वो विजिट कर रहे हैं कनाडा को एट द एंड ऑफ मई, और बकिंगम पैलेस जो है उसने आज बोला कि ये दोनों जो हैं किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला दे विल अटेंड स्टेट ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कनाडा इन ओटावा, और कार्नी साहब ने आज इसको बहुत बड़ा हिस्टोरिक ऑनर बोला है, और उन्होंने कहा जी कि ये मैच करता है विद द वेट ऑफ आवर टाइम्स, उन्होंने कहा जी कि रॉयल विजिट जो है ये बिल्कुल ये चीज जो है उसको साफ कर देता है कि कैनेडा का अपना एक सॉवरेनिटी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ट्रंप साहब का रेट्रिक है वो बार बार कहते हैं कि इसको 51st स्टेट मुझे कैनेडा को बनाना है, और जो है इसको आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब को तो वो गवर्नर ट्रूडो वगैरह कहते रहते थे, तो वो ये बात वो कहते हैं जी कि अब वो ऐसा नहीं कह सकेंगे। यूनियन जो रिप्रेजेंट करती है ऑटो वर्कर्स को एट जनरल मोटर्स का प्लांट जो है ओटावा में, उन्होंने कहा जी कि कंपनी जो है कट कर रही है थर्ड शिफ्ट, तीन शिफ्टों में यहां पर काम होता था, वो कहते थे ये थर्ड शिफ्ट इस फॉल से कट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये जो टैरिफ्स लग गए हैं बहुत सारे ट्रंप साहब की वजह से उसकी वजह से बहुत मुश्किल है। यूनिफर जो कि रिप्रेजेंट करती है 3000 एम्प्लॉयज को, उसने कहा ये जो शिफ्ट इन्होंने रिड्यूस किया है जीएम ने ये बहुत ही रेकलेस मूव है और ये काफी इसके अंदर जो है ऑटो पार्ट्स के जो सप्लायर्स है उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा। लोकल 222 के प्रेसिडेंट जो है जेफ ग्रे, उन्होंने कहा कि ये इम्पैक्ट करेगा हंड्रेड ऑफ जॉब्स को। जनरल मोटर्स ने कहा कि हमको ये ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा और थर्ड शिफ्ट को खत्म करना ही पड़ेगा और दो शिफ्टें हम जो है कर सकते हैं क्योंकि जो डिमांड है वो हम देख रहे हैं कि कम हो जाएगा और ये जो ट्रेड एनवायरमेंट है ये भी कुछ इतना अच्छा नहीं रहेगा। प्रीमियर फोर्ड जो है उनको जब आज ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है फॉर ओशावा वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। ईरान जो है उसको इमीडिएटली अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम रोकना चाहिए ताकि लॉन्ग रेंज मिसल डेवलपमेंट इनको रोक दे और इनको अलाउ करना चाहिए यूएस इंस्पेक्टर्स को एट इट्स फैसिलिटी। ये बातें जो हैं आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनको इसके अलावा वॉक अवे करना पड़ेगा। ये जो हूथीज का हर वक्त यमन के अंदर जो है वो करते हैं हेल्प करते रहते हैं और अपने न्यूक्लियर वेपन्स और उसके एनरिचमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ईरान ने रिपीटेडली कहा है कि उसका जो मिसल प्रोग्राम है वो बिल्कुल नहीं उसको छोड़ेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका प्रोग्राम जो है पीसफुल है, एनर्जी के नीड्स के लिए है। सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि इसीलिए इन्हीं बातों की वजह से जो फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स अभी कल सैटरडे को रोम के अंदर होना था वो अब पोस्टपोन कर दिया गया है और अब नया डेट उन्होंने कहा जी हम सेटअप करेंगे डिपेंडिंग के यूएस जो है वो क्या अप्रोच लेके साथ चलता है आगे। सीरियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने आज बहुत अरसे के बाद जो इजरायली एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे उसके ऊपर कंडेम किया क्योंकि आज तो हद ही कर दिया इसराइल ने क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास डमास्कस के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स किए हैं जिसको के प्रेसिडेंट ने सीरियन प्रेसिडेंट ने डेंजरस एस्केलेशन बोला है और उन्होंने कहा जी कि इसराइल जो है ये बहुत ज्यादा इलाके के अंदर खतरा पैदा कर रहा है। इसराइल ने एक्यूज किया सीरिया को, उन्होंने कहा जी कि तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो ड्रूज जो माइनॉरिटी है फ्रॉम सेक्टेरियन वायलेंस। वो तुसी मामे दे पुत्र हो, अपने मुल्क के आराम नाल बैठो, ऑलरेडी अपने मुल्क अग लाइए तुसी, है ना। तो नहीं जी नहीं, वो उसको इसका तकलीफ है सीरिया का। प्रेसिडेंट अहमद अल-शारा जो है उसके ऑफिस ने बोला कि ये जो स्ट्राइक्स है ये बहुत ही गलत किस्म के अटैक्स है और ये शो करते हैं इनका रेकलेस किस्म का एटीट्यूड और हमारा कंट्री जो है उसको ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और सिक्योरिटी का क्राइसिस बनाना चाहते हैं। यहां पे सीरिया जो है वो बिल्कुल अपने सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के ऊपर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमको राइट है टू डिफेंड द राइट ऑफ आवर पीपल बाय ऑल मीन्स अवेलेबल। उसके अलावा उन्होंने अरब स्टेट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बोला कि भाई इसको रोको। भाई वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का बात सुनते कब है और अरब जो है वो तो इतना जोर ही नहीं लगा रहे हैं उसके इसराइल के ऊपर ना, तो अभी कैसे चलेगा। यूएस जज जो है उन्होंने जी अगेन एक इशू कर दिया है परमानेंट इंजंक्शन और उन्होंने प्रिवेंट कर दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो ये जो एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798 यूज किया था टू डिपोर्ट वेंजवेलन्स को फ्रॉम साउथ टेक्सस उसके ऊपर। उन्होंने कहा जी ये वॉर टाइम का ये एक्ट है और ये रूलिंग जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और ये जो है इसके ऊपर अपील फौरन ही डाली गई थी जिसका के भी फैसला आया है। इसमें बार किया गया है गवर्नमेंट को कि वो ये लॉ बिल्कुल नहीं यूज करेगा जो कि वो चाहते थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि ये जितने अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाए यूएसए क्योंकि वो कहते हैं ये क्राइम्स में इन्वॉल्व है और बहुत से क्योंकि उन्होंने गैंग्स के बहुत सारे नाम लिए थे कि उसके ये इसके मेंबर्स हैं हालांकि हर कोई नहीं है। एक 36 पेज का डिसीजन आया है यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट जज जो है फर्नांडो रॉड्रिगस जूनियर और उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि तुमने एक्सीड किया है जो ये इस एक्ट का स्टैट्यूटरी बाउंड्रीज है उसको। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वॉर टाइम का लॉ था तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त पीस टाइम के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हैं लोगों को निकालने के लिए। तो काफी प्रॉब्लम्स ट्रंप साहब के चल रहे हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं, वो चाहते हैं कि चीजों को रिजॉल्व किया जाए, साथ में चलाया जाए, लेकिन वो चीजें जो है वो बिल्कुल रिजॉल्व नहीं होते हैं और इसलिए उसकी वजह यह है कि जुडिशरी उनका आजाद है और वो जो भी कुछ उनको लगता है कि ये गलत फैसला दे रहे हैं तो उनको वो रोक देते हैं। जेडी वैंस जो है उन्होंने आज एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं होप करता हूं कि या हम यूएस होप करता है कि इंडिया जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा टू टेररिस्ट अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इस तरीके से कि जो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं देगा। अब मुझे समझ नहीं आई जेडी वैंस साहब आपकी बात जो है, आपने कहा जी ऐसा करेगा यानी आप क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डैमेज करे, अच्छा अटैक ना अगर करे और क्या करे, सारी दुनिया में जाके जो है ढंडोरे पीटे कि जी पाकिस्तान जो है वो ठीक कंट्री नहीं है, हालांकि खुद उसके सबसे ज्यादा टेररिस्ट जो है वो एक्ट्स हैं, और आपके तो अपने मुल्क में उनके बंदों ने आके जो है आपके यूएस सिटीजन को मारना शुरू किया। हाउ कैन यू हैव दैट काइंड ऑफ ग्लासेस, है ना, ये थोड़ा अपना कलर्ड ग्लासेस उतारो। आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड कि आपके बहुत ज्यादा प्यार है इंडिया के साथ क्योंकि आपके वाइफ भी इंडियन है जो उषा जी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फेयरनेस थोड़ा दिखाना कभी पड़ेगा, है ना। तो वैसे तो हमने देख लिया कि आप लोग कुछ फेयरनेस आपने इजराइल और पैलेस्टाइन के मसले पे तो नहीं दिखाया, लेकिन इधर के एरिया में थोड़ा आप अगर दिखाएंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है कल आपको पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाए, कल आपको पाकिस्तान से क्रिटिकल मिनरल्स पड़ जाए, तो काहे को आप इतना हीट जो है पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहे हो। भारत जी उन्होंने कहा जी कि ये ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना चले, यानी उसका बेड़ा गरक आप कर दो लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये नहीं जाना चाहिए है। फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसको जिस एक्सटेंट तक वो रिस्पॉन्सिबल है उस एक्सटेंट तक उसको कोऑपरेट करना चाहिए इंडिया के साथ। अगेन मुझे समझ में नहीं आया, यानी पाकिस्तान का कुछ लेना देना ही नहीं है, ये फॉल्स फ्लैग है और इंडिया तो ट्रांस नेशनल टेररिज्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में से उसके स्पाइज पकड़े, इधर कनाडा के अंदर वो क्या कर रहा है, हमारा सीसीस का रिपोर्ट था कि हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं वो हमारे उसमें इलेक्शंस में, बंदे आके हमारे बंदों को मार के जा रहे हैं, आपके अपने खुद के मुल्क में आपने बंदे उनके पकड़े हैं, अभी आप और क्या चाहते हो भाई। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो करे और वो इंश्योर करे कि उसके टेरिटोरीज के ऊपर अगर कोई टेररिस्ट है तो उसको हंट डाउन करे और डील करे। तो आपको क्या लग रहा है कि टेररिस्ट जो है वो दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं है, खुद इंडिया के अंदर नहीं है, ये जो इंडिया के अंदर मिठाई जो है जो कुकी जो को मार रहे हैं वो कौन है, अर्बन नक्सल कौन है, वो जो अमरनाथ यात्रा में लोग मारे गए थे वो कौन है, ये जो मुसलमानों के जिन्होंने ये घर और शॉप्स ढाए थे नू के अंदर वो कौन है, यू नो इंदिरा गांधी को किसने मारा, राजीव गांधी को किसने मारा? तो आई मीन आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तो वही मैंने आपसे कहा ना जरा कलर्ड ग्लासेस अपने उतारो आपको पता चले। अच्छा जनाब, सऊदी अरेबिया जो है वहां का अब टूर करने वाले हैं ट्रंप साहब, तो उनका जो एंटूरवाज है वो अब मई में आने वाले दिनों में वो करेगा, तो उसमें वो चाहते हैं जाहिर है कि बात की जाए कि इसराइल के साथ भी आप थोड़ा अपना जो है वो ताल्लुकात अच्छे करो, लेकिन एक किंगडम का मैसेज जो है वो लेकर जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद वो अभी डीसी में आए हैं और उन्होंने बहुत क्लियरली ट्रंप साहब को बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि अगर आप किंगडम का दौरा कर रहे हैं तो आप और आपके सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं वो बिल्कुल इसराइल का जो मुद्दा है वहां पे नहीं उठाएंगे कि सऊदी अरेबिया या किंगडम जो है अपने ताल्लुकात जो है उसको इसराइल के साथ बेटर करे। तो इसलिए वैसे तो ये होता ही है कि जो डिप्लोमैट्स हैं वो जब मिलते हैं बिफोर द टूर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट तो वो थ्रैश आउट कर लेते हैं डिटेल्स, लेकिन ये स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है उनको इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि जिस वक्त ट्रंप साहब जो है वो सारा उधर बैठे हुए हो मीडिया के सामने तो वो ऐसा क्वेश्चन मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है उनसे कर ले और फिर बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट वहां पर क्रिएट हो जाए, और इसलिए क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पब्लिकली एक्यूज कर रहे हैं इसराइल को ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा। तो उन्होंने पहले भी सऊदी अरेबिया ने बताया है कि हमारा जनता जो है वो बहुत ज्यादा अफसोस में और दुख में और गुस्से में है जो कुछ इसराइल गाजंस के साथ कर रहा है, तो पैलेस्टीनियंस के साथ। तो इसलिए ALM फजलुर रहमान जो रिटायर्ड बंगाली मेजर जनरल हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि हमको इन्वेड कर लेना चाहिए एंड ऑक्यूपाई करना चाहिए 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया अगर इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है। ये आज बहुत ही खतरनाक किस्म की खबर है। ये जो है फॉर्मर हेड ऑफ बांग्लादेश राइफल्स है जो कि अब हो गया है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, और ये बहुत ही क्लोज एडवाइजर समझे जाते हैं मोहम्मद यूनुस साहब के जो कि इंटरिम चीफ हैं इस वक्त बांग्लादेश के। इन्होंने कहा जी कि हमको अपना कोऑपरेशन चाइना के साथ बढ़ाना चाहिए इस वाइल्ड आइडिया के ऊपर काम करने के लिए, और ये जो 7 स्टेट्स हैं इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, ये लैंड लॉक्ड रीजन ऑफ इंडिया के अंदर है, तो इनका कुछ भी तरीका रास्ता इनके पास नहीं है ओशन के पास पहुंचने के लिए, तो बांग्लादेश जो है वो इट इज द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन इन द रीजन। तो इसलिए ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे हमको भी ये 7 स्टेट्स जो है अपने फोल्ड में ले लेना चाहिए, और ये जो है चाइनीज जो है उनके कोऑपरेशन के साथ ये करना चाहिए। अब जाहिर है कि इनके जो रिमार्क्स हैं उसको बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर ऑल स्पेक्ट्रम जो है ऑफ पॉलिटिकल अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है उसको कंडेम किया गया है, खासतौर पे बीजेपी के लीडर्स ने, इंक्लूडिंग उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ने। बहुत सारे प्रोटेस्टर जो थे जी वो गैदर्ड थे इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर, और वो बहुत ज्यादा कंडेम कर रहे थे हिंदुस्तान का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम के अंदर, और उसके लिए वो एक्यूज कर रहे हैं पाकिस्तान को। इसमें सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बहुत सारे सिख जो थे वो भी इसमें इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया का के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं ये सेंटर्स ऑफ टेररिज्म बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि सिख बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी जो पंजाब की जमीन है उसको यूज किया जाए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। उन्होंने आज वार्न किया इंडिया को कि अगर आपने ये ऐसा वाटर टेररिज्म किया तो उसका आपको भी बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। इसी तरह के जो प्रोटेस्ट थे आज पेरिस के अंदर भी हुए थे, लेकिन पेरिस के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी जो थे वो साथ साथ थे, और ये जो इंडियन थ्रेट्स है उनके खिलाफ जो है वो बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया तो फिर आपके लिए भी मुश्किलें होंगे, और एंटायर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड देम दे आर स्टैंडिंग फर्मली विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज आर स्टैंडिंग फर्मली विद पाकिस्तान मिलिट्री। पाकिस्तान की जो मिलिट्री टॉप ब्रास है जी उसने आज फिर से वादा किया है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो डिलिबरेट एफर्ट्स है टू डी स्टेबिलाईज पाकिस्तान उसको कन्फ्रंट भी किया जाएगा और डिफीट भी किया जाएगा विद रिजॉल्व एंड क्लैरिटी। ये आज बातचीत जो है स्पेशल कॉर्प्स कमांडर का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसको के चेयर कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर एट जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत ज्यादा तारीफ की प्रोफेशनलिज्म स्टेडफास्ट मोरल की और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की अपने आर्म्ड फोर्सेज की। उन्होंने कहा जी कि हम जो है पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ यूनिटी में खड़े हैं, हम अपना होमलैंड जो है उसको हर कीमत के ऊपर डिफेंड करेंगे, और ये बहुत ही लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट, और ये आज जनरल साहब का बिल्कुल सही उनका कहना है। वो कहते हैं जी कि हमको बिल्कुल बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है क्योंकि कोई भी प्रोवोकेटिव एक्ट जो है इंडिया की तरफ से हो सकता है, तो हर फ्रंट पे हमको बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है जी। और उन्होंने फिर इसके अलावा जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो जुल्म अब मुसलमानों के साथ और ज्यादा शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को उठा के ले गए हैं उसके ऊपर भी इन्होंने अपने कंसर्न शो किए। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आज बहुत सारे अरब जो एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में उनके साथ बात किया। पहले तो उन्होंने कुवैत के एम्बेसडर के साथ बात किया पहलगाम के इस इंसिडेंट के ऊपर। नासिर अब्दुल रहमान जसर जो है ही कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर एट द पीएम हाउस, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जी हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान ने 90,000 लोग जो हैं वो गंवाए हैं और 152 बिलियन US डॉलर का इकोनॉमिक लॉसेस जो है इसके अंदर उठाया है। इसके साथ साथ उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी बोला कि भाई इंडिया को बोलो कि डी एस्केलेट करे और ये जो टेंशन है इसको डिफ्यूज करे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है पीस और स्टेबिलिटी के लिए इन द रीजन। ये बातें उन्होंने सऊदी एम्बेसडर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के साथ की। इसके बाद उनकी मुलाकात जो है यूएई के एम्बेसडर हमद उबैद इब्राहिम सालिम अल जाबी के साथ हुई। उनको भी उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान इज कमिटेड फॉर पीस और इनको रोको, और ये जितने भी जो है ये रीजन के अंदर टेंशन इंडिया पैदा कर रहा है ये सब लोगों ने आज इनके साथ मुलाकातें जो हैं पीएम हाउस में किए। 82 पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने आज प्लीड किया गिल्टी टू चार्जेस रिलेटेड टू वायलेंट प्रोटेस्ट इन नवंबर 26, और उनको 4 महीने का जेल दिया गया है और 15,000 ईच जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है रावलपिंडी की उसने इनको फाइन किया है। ये प्रोटेस्ट जो है ये ऑर्गेनाइज किए थे उन्होंने कहा जी कि टू बिल्ड प्रेशर ऑन गवर्नमेंट के जी इमरान खान को छोड़ा जाए, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल कन्फेस किया अपने क्राइम को जज के सामने और अपना एफिडेविट लिख के दिया कि पीटीआई का जो लीडरशिप है उसने हमको इंसाइट किया था कि हम प्रोटेस्ट करें और ऐसे सड़कों पर बाहर आए। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब जो है उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन और रोबस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किया था, उसकी वजह से ये अभी हमने जो है पाकिस्तान में सरप्लस शो किया है। उन्होंने कहा जी कि अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट्स जो लास्ट नवंबर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में देखे गए थे और They were driven by highest ever interest rates and record petroleum levy revenues, जो दोनों ही जो है non tax sources है. उन्होंने कहा जी कि हम इन्होंने help किया पाकिस्तान को कि अपने deficit budget को जो है surplus में change करें for the first time in 24 years. Provincial Disaster Management Authority Punjab जो है उसने आज weather alert लाहौर के लिए और surrounding regions के लिए डाला है. उन्होंने कहा जी कि thunderstorms और बहुत ही heavy rains जो है जारी रहेंगे. अभी तक पंजाब में दो deaths हो चुके हैं इसकी वजह से, 24 injured है. Authorities ने कहा कि 4th मई तक जो है ये thunderstorm और बारिशें होते रहेंगे. लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा, डेरा गाजी खान, मुल्तान, साहिवाल, भावरपुर डिविजन्स में. इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि लैंडस्लाइड्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है मरी में और गलियात के अंदर. और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि केपी जो है वहां पे भी रेन्स और थंडरस्टॉर्म्स आएंगे. एयर इंडिया जो है वो 600 मिलियन US डॉलर्स का एडिशनल कॉस्ट जो है वो बेयर करेगा अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस एक साल तक बंद रहा. इसलिए आज एयर इंडिया ने जो कि एयर जो जो गवर्नमेंट जो है मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उसको बोला है कि भाई या तो ये झगड़ा खत्म करो या हमें उसके लिए कॉम्पेंसेट करो. क्योंकि आपको पता ही है कि एयर इंडिया ऑलरेडी भी बहुत ही पतली हालत के अंदर है और उसको हमेशा वो कहते हैं कि हमको इसको बेल आउट करना चाहिए है. एयर कैरियर जो है उसने गवर्नमेंट को बोला है कि हमको सब्सिडी दें ताकि हमारे ये लॉसेज जो है ये हम रिकवर कर सके अगर ये एक साल तक लास्ट करेगा. आज उन्होंने एक लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को और उन्होंने कहा जी कि ये जो मैक्सिमम जो नुकसान होएगा वो एयर इंडिया को होएगा क्योंकि बाकी जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है. तो उन्होंने कहा जी कि हमको क्योंकि ज्यादा फ्यूल यूज करना पड़ेगा और क्रू मेंबर्स भी ज्यादा लाने पड़ेंगे उसकी वजह यह है क्योंकि रूट्स जो है वो लंबे हो जाएंगे. तो उसके लिए आज इंडिया ने आईएमएफ को बोला है कि ये जो लोन्स आप पाकिस्तान को दे रहे हैं उसको आप थोड़ा रिव्यू करो. ये एक इंडियन गवर्नमेंट का सोर्स है जिसने आज रॉयटर्स के साथ बात करते हुए ये सारे डिटेल्स दिए हैं और उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने आईएमएफ को कहा है कि ये बंद करो पाकिस्तान को पैसे देने. इन्होंने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं और इंडिया कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और आईएमएफ है अलबत्ता उनसे जब कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया था और कुछ भी कमेंट नहीं दिया है. तो एडवाइजर टू पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है बिल्कुल ट्रैक के ऊपर चल रहा है. बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसने अब इस हफ्ते कहा है कि हम बिल्कुल ये जो सेंसस है ये हम कास्ट के बेस के ऊपर ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था ऑपोजिशन पार्टीज और सोशल जस्टिस एडवोकेट्स का तो इसलिए भी हम ला रहे हैं. लेकिन इसके खिलाफ सबसे ज्यादा बीजेपी बोलती थी तो आज देखा गया है कि मोदी जी और उनकी बीजेपी जो है उसने अब यू टर्न लिया है इसके ऊपर और वो कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस लाएंगे जबकि पहले वो कहते थे कि कास्ट सेंसस जो है डिविसिव है, एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है. अक्टूबर 2023 में बिहार में जिस वक्त कास्ट सर्वे हुआ था तो मोदी जी ने एक्यूज किया था ऑपोजिशन को कि तुम लोग कंट्री को डिवाइड कर रहे हो. फिर मोदी जी की गवर्नमेंट ने 2021 में एक एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनको कहा था कि एक्सक्लूड जो इन्होंने किया है कास्ट का डाटा वो एक कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन है बीजेपी गवर्नमेंट का. क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जो बहुत ही ज्यादा वोकल क्रिटिक थे इस आइडिया के कि कास्ट नंबरिंग जो है ये तो अर्बन नक्सल थॉट है. इसके अलावा वो कांग्रेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा एतराज करते थे फॉर एलिजली वॉन्टिंग टू टेक अवे विमेन्स ज्वेलरी. वो कहते थे अगर कास्ट सिस्टम लगा दिया तो ये औरतों का ज्वेलरी सब जो है उनके पास से चला जाएगा. इसके अलावा वो कहते थे कि जिन लोगों ने कास्ट सेंसस बनाया है वो जो है सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं और मोदी जी ने तो यहां तक कहा था कि ये सिन है, गुनाह है ऐसा करना. यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इस चीज के अंदर आगे आगे थे और एंटी कास्ट सिस्टम के बिल्कुल फेस थे. बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा उन्होंने भी 2019 में डिसमिस किया था कास्ट पॉलिटिक्स और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में एक ही कास्ट है एंड दैट इज पुअर. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने भी कहा था कि कास्ट का पॉलिटिक्स जो है जो करना चाहता है उसको हिंदुस्तान से ठुड्डा मार के बाहर निकालो, किक आउट करो उसको. अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा मजाक वो उड़ाते थे राहुल गांधी का जब वो डिमांड करते थे कास्ट सेंसस का. उन्होंने कहा जिस आदमी का खुद का कास्ट नहीं मालूम है वो कैसे हमको बोल सकता है कि कास्ट सेंसस करने की जरूरत है. भाईजान क्या मतलब है, नेहरू का पोता है वो, आप क्या कर रहे हो बातें हैं. इंदिरा गांधी नहीं, नेहरू का पड़ पोता है, इंदिरा गांधी का नवास पोता है और राजीव गांधी का बेटा है तो आपको कैसे उसका कास्ट नहीं मालूम है यार, क्या हो गया। बीजेपी के आईटी सेल के जो चीफ है अमित मालविया, उन्होंने भी कहा जी कि ये बिल्कुल सोशल ऑर्डर जो है इसको खराब कर देगा। स्मृति ईरानी ने भी बहुत मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस का एक दफा कहा था कि ओ इनके पास तो बस एक ही पिच है, दैट इज कास्ट सेंसस, और इनको अपने खुद के जो मेंबर्स हैं उनका कास्ट पहले फाइंड आउट करना चाहिए। बीजेपी की एमपी जो है कंगना रनावत, हमारी बाजी जो है, उसने भी बहुत ओपनली इसको अपोज किया हुआ था। इसके अलावा दूसरे भी बीजेपी के लोग कास्ट बेस्ड डिविजन को बहुत ज्यादा खराब समझते थे क्योंकि वो कहते थे हिंदुओं के बीच में इसकी वजह से जो है वो खराबी आएगी और उनकी यूनिटी खराब होगी और उसको रिजेक्ट किया जाए। और आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने कैस्ट सिस्टम जो है उसको कह जी हम इंप्लीमेंट करेंगे। टॉम क्रूज साहब जो है उनसे लोगों ने पूछा कि भई आप इतने खतरनाक, इतने बुलंद, इतने ऊंची जगहों पे जहां पे बेतहाशा प्रेशर होता है, हाई एल्टीट्यूड होता है, तो आप कैसे ये स्टंट्स करते हो? अभी जैसे आपको हमने बताया था एक महीना पहले कि कैसे बस दो फिंगर से लटक के वो तैयारे के साथ वो सारे स्टंट कर रहे थे, तो वो कहते हैं जी मैं बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करता हूं जिससे कि मुझे फिर एनर्जी आता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे मेरा बॉडी बहुत ज्यादा बर्न करता है। तो वो क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? बहुत सारे सॉसेजेस खाते हैं और 12 अंडे खाते हैं, अरे क्या बात है, और बेकन खाते हैं, टोस्ट खाते हैं और कॉफी लेते हैं और बहुत सारे फ्लूइड्स पीते हैं। सिंगर एड शीरन जो है, जो कि आजकल इंडिया का टूर कर रहा है और जैमिंग उसने किया है एआर रहमान और अरिजीत सिंह के साथ, तो वो कह रहा है कि मुझे पंजाबी कल्चर से प्यार हो गया है और उसका जो अपकमिंग एल्बम है प्ले, उसमें वो एक पंजाबी गाना भी गा रहा है। इसके अलावा उसने अपना एक टैटू बनवाया है पंजाबी में जिसको वो शो कर रहा है इन एप्रिसिएशन ऑफ द पंजाबी कल्चर। अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने अपना एल्बम जो है उसका टीजर डाला है और उसमें वो एक पंजाबी गाना छम छम छमके सितारे वर्गी वो गाते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार और सैफ अली खान जो हैं उनकी बड़ी ही पॉपुलर जोड़ी थी अभी कुछ अरसे तक और फिर उसके बाद ये दोनों नजर नहीं आए। दे आर गोइंग टू रिक्रिएट दैट सेम मैजिक आफ्टर 17 ईयर्स इन अ नेल बाइटिंग थ्रिलर डायरेक्टेड बाय फिल्म मेकर प्रिया दर्शन। और ये दोनों जो है उन्होंने आपस में कहा कि हम काम करने में बड़ा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के काम को एडमायर करते हैं, तो एक स्क्रिप्ट इनकी तरफ से को भेजा गया था प्रिया दर्शन की तरफ से, उन दोनों ने जब पढ़ा तो दोनों ने कहा हम करने को तैयार है। ये बहुत ही एंटरटेनिंग थ्रिलर होने वाली है और लेकिन फिर भी सोर्सेज कहते हैं कि ये ऑडियंस को बिल्कुल एज ऑफ देयर सीट्स रखेगी। इट विल गो ऑन फ्लोर्स इन ऑगस्ट दिस ईयर और ये रिलीज की जाएगी 2026 के अंदर। और जनाब आज पिशावर जलमी ने कर दिखाया जिसका बड़ी देर से इंतजार था, आज उन्होंने डिफीट किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की सेकंड डिफीट है इन द 22nd मैच ऑफ पीएसएल 10 और ये आज 6 विकेटों से जीते हैं एट कदाफी स्टेडियम लाहौर थैंक्स टू माज सदाकत एंड स्किपर बाबर आजम्स जबरदस्त जो बैटिंग परफॉर्मेंस। यूनाइटेड ने डिसाइड किया था टू बैट फर्स्ट आफ्टर विनिंग टॉस। जलमी जो थी उन्होंने जो है वो दो विन्स लिए हुए थे तो वो चाहते थे कि आज का मैच भी जीते क्योंकि 4 लॉसेज उनके जो है हो चुके हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाए थे 144 अपने 20 ओवर्स के अंदर। तो जलमी जो है उनका तो एक्सप्लोसिव स्टार्ट था। मिशेल ओवन जो थे उसने आते सारी पहली बॉल पे छक्का मारा और दूसरी बॉल पे जो है वो काइले मायर्स ने उसको डिसमिस कर दिया। बहरहाल उसने टोन सेट किया। उसके बाद जी बाबर और सायम आ गए फिर लेकिन बेन द वॉशियस ने रिमूव किया साइम को। 1 ही अभी उसने एक ही रन बनाया था जिसकी की वजह से जलमी अगेन 12 for 2 थे और लग रहा था कि आज फिर हारेंगे इन 1.2 ओवर्स। फिर आ गए जी नसीम शाह, उन्होंने 100 रन पार्टनरशिप जो था वो तोड़ा बाय डिसमिसिंग माज। माज जो थे 33 बॉल्स पे 55 रन बना चुके थे और जलमी ने अपना ये सारा रन चेस कंप्लीट किया 17th ओवर के अंदर ही। आज बाबर आजम ने अनबीटन 53 बनाए ऑफ 49 डिलीवरीज। रेनिंग चैंपियन इगा स्वैतिक जो है शी गॉट अ क्रशिंग डिफीट टुडे 6-1 6-1 इन सेमीफाइनल्स बाय कोको ग्रॉफ। ये जो अमेरिकन है शी वॉज फेसिंग वर्ल्ड नंबर 1 शी विल फेस नाउ वर्ल्ड नंबर 1 ऑरियन सबलेंका फॉर मैड्रिड ओपन टाइटल। सेकेंड रैंक्ड स्वैतिक जो है 5-time ग्रैंड स्लैम विनर है। इन्होंने ड्रॉप किया सर्व 5 दफा अगेंस्ट गॉफ as poll fell in 64 minutes. And janab, absolutely our last news, Trump saab daba dab business kar rahe hai, halanki ye conflict of interest hai, American president hote hue aap nahi kar sakte, lekin janab tah badi padi cheez hai na, Trump family, wo kehte hain president ka kuch lena dena nahi hai, it's Trump family hai na, Trump family ne co-struck strike kiya hai ek deal to build luxury golf resort in Qatar, और इन्होंने जो है अभी इनकी फैमिली जो है कोई भी शाय अवे नहीं कर रही है, होल्ड बैक नहीं कर रही है फॉरेन डील मेकिंग में। पहले भी दफा इन्होंने किया था, अभी सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये करते जा रहे हैं। हालांकि पब्लिक ओपिनियन जो है कि जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया ये हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये फीचर करेगा ट्रंप ब्रांडेड बीच साइड विलाज 18 होल गोल्फ कोर्स और ये बनाएगी इसको एक सऊदी कंपनी इन द फर्स्ट फॉरेन डील बाय ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन सिंस ट्रंप टुक ऑफिस। नोआ बुक बाइंडर जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑफ वॉच डॉग ग्रुप, उन्होंने कहा है कि जी मैं इनको सू करूंगा फॉर अलेज्ड एथिक्स वायलेशन यानी कि ट्रंप साहब को। और उन्होंने इसके अलावा जो है ये कतारी डील के लिए बहुत ब्लास्ट किया इसकी फैमिली को ट्रंप साहब की। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब मुकदमे पे मुकदमा, तारीख पे तारीख आती जा रही है ट्रंप साहब के पास, लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं मैं ना मानू है जी।
बिल्कुल जनाब, और ट्रंप ना मानू हार। पीएसएल की भी बात कर लेते हैं कल के मैचेस की। कल क्वेटा के दरमियान मैच, क्वेटा और इस्लामाबाद का मैच होगा। आज इस्लामाबाद जो है अपना सेकंड मैच हार गया, जैसे शाजी जी ने अभी अपनी बताया न्यूज के अंदर। तो पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं फौरन और हम देखते हैं इस्लामाबाद नंबर वन पर है जनाब। 7 मैचेस खेले, 5 मैचेस जीते हैं, उन्होंने 2 मैच लूज किए हैं। लाहौर कलंदर नंबर 2 पर आ गए हैं, 8 मैच इन्होंने खेले हैं, 4 मैचेस इन्होंने जीते हैं और 3 मैचेस इन्होंने लूज किए हैं। नंबर 3 पे क्वेटा की टीम है, 7 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 4 मैचेस इन्होंने विन किए हैं और 2 मैचेस लूज किए हैं। चौथे नंबर पर आ गए हैं जनाब कराची किंग्स, 7 मैच खेले हैं, 4 इन्होंने जीते हैं और 3 मैच जो हैं इन्होंने हारे हैं। और पेशावर आज जीत तो गए लेकिन बहरहाल 5वें नंबर पर है और इनको भी और मेहनत करनी है। 7 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। मुल्तान सुल्तान शुरू से ही बॉटम पर हैं, 8 मैच खेल के 1 मैच ही इन्होंने जीता है और 7 मैचेस जो है हारे हैं। तो मुल्तान का सुल्तान जो है वो उनकी कश्ती डोल रही है। पेशावर जलवी मैं कहता हूं, मुझे अगेन मेरी ये ख्वाहिश है कि पेशावर जलमी जो है वो 5वें से कम चौथे नंबर पर आ जाए ताकि प्ले ऑफ में जो है वो क्वालिफाई कर जाए, लेकिन इस वक्त 5वें नंबर पर है। हालात थोड़े से टाइट हैं लेकिन चले अभी मैचेस बाकी हैं, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। चले जनाब टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपके साथ हैं। और हमारा नंबर, हमसे जुड़ने का नंबर 4166201778। और अगर आप कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां आपको रेडियो स्टैटिक सुनाई दे रहा है तो आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900, 6478724900 डायल करके आप क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं eawaz.com, यहां आपको उर्दू, इंग्लिश और अब पश्तो में भी न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल जाएगा। तो हमारी टीम बहुत ही मेहनत करती है न्यूज़पेपर के लिए eawaz.com पर, तो आप जाइए और उस न्यूज़पेपर को इंग्लिश में, उर्दू में और पश्तो में पढ़िए और हमें फीडबैक भी जरूर दीजिए। चलिए जनाब टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। अगेन हमारा नंबर 4166201778।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com QTL because we care.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
So tomorrow, Saturday, Sunday, there is an open house in Brampton. These are 92 state homes. Unme se ek ghar sale pe hai. Yahan ek builder 34 aur 36 lakh ka ghar jo bana raha hai, usme ek regular cheez aapko bana ke de raha hai. Is ghar mein appliances kitchen aid ki hain. Is ghar ka front and backyard टॉप ऑफ द टॉप नाइन स्टोन लगा हुआ है। इस घर में टोटल सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं। इस घर में हर बेडरूम के साथ वॉशरूम है, सिक्स बेडरूम सिक्स वॉशरूम। इसकी बेसमेंट इज ह्यूज बेसमेंट अराउंड 2400 स्क्वायर फुट, डबल दो बेडरूम्स के साथ है, ह्यूज प्ले रूम है, ह्यूज लिविंग रूम इसमें आपको नजर आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, इस घर की बेसमेंट की तमाम विंडोज अबव ग्राउंड है। देयर इज एन ओपन हाउस सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे 2 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान ओपन हाउस है। मेरी रिक्वेस्ट है, नॉट नेसेसरी वी बाय एवरीथिंग, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम सी दिस होम। इट इज वन ऑफ A ब्यूटिफुल स्टेट होम, 92 एनक्लेव, एक अलग सी कम्युनिटी है जो कि अमीर तरीन लोगों की कम्युनिटी है। दीज हाउसेज आर ब्यूटिफुल, कम सी दिस होम। ओपन हाउस बिटवीन 2 to 5, 2 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान ओपन हाउस। देर इज नो ऑब्लिगेशन व्हाटसोएवर, नो ऑब्लिगेशन। आइए इस घर को देखिए, सैटरडे संडे 2 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान ओपन हाउस। दिस इज 64 बर्लवुड, 64 BURL WOOD वुड ड्राइव इन